ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕರೇ ಮನ್ಸಾ ಸೇವಾ, ಕರೇ ಮನ್ಸಾ ಸೇವಾ, ಬಢಾಯೇ ಚರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ವಿಚಾರೋ ಮೇ ಐಸಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಯಿ, ಅಚ್ಛೇ ವಿಚಾರೋ ಮೇ ಸಬ್ಕೀ ಭಲಾಯಿ, ಹಟಾ ದೇ ಹರೇಕ್ ಬಿಖರೆ ತಮ್ಮ ಆವರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಹೈ ಆಜ ಬಿಖರಾ ಹುವಾ ಜೋ ಧುವಾ ಸಾ, ಹೈ ಆಜ ಬಿಖರಾ ಹುವಾ ಜೋ ಧುವಾ ಸಾ, ಪಲ್ ಭರ ಕಾ ಮೆಹಮಾ ಹೈ ಯೇ ಕುಹಾ ಸಾ, ಚಲಾ ಜ್ಞಾನ ಸೂರಜ ಬಢಾತೆ ಚರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಕರೇ ಮನ್ ಮೇ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಚಲಿತ್ ನ ಹೋಂಗೆ, ಕರೇ ಮನ್ ಮೇ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಚಲಿತ್ ನ ಹೋಂಗೆ, ಕಷ್ಟೋ ಕಿ ಆಂಧಿ ಮೇ ಕವಲಿತ್ ನ ಹೋಂಗೆ, ಸಂಬಲ್ ಸಹಾರಾ ದೇಂಗೆ ಧರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಹೃದಯ ಮೇ ಹಮಾರೇ ಯ ಶುಭ ಭಾವನಾ ಹೈ, ಸಭಿ ಶಾಂತ ಹೂ ಸುಖಿ, ಸುಖಿ ಶಾಂತ ಸಬ್ ಹೂ ಯ ಶುಭ ಕಾಮನಾ ಹೈ. ಕರೇ ಯಾದ ಪ್ರಭು ಸೇ ಕಿಯೇ ಹರ ಪ್ರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಸಭಿ ತತ್ವ ಪಾಂಚೋ ಸಂವರ್ನೆ ಲಗೆ ಹೈ, ಯೇ ಪಾವನ್ ಪ್ರಕಂಪನ್ ಬಿಖರ್ನೆ ಲಗೆ ಹೈ, ಸಭಿ ತತ್ವ ಪಾಂಚೋ ಸಂವರ್ನೆ ಲಗೆ ಹೈ, ಬಿಖರ್ನೆ ದೇ ಉಮರ್ನೆ ದೇ ಅಂತಸ್ಸೆ ಕರುಣಾ ಕಿರಣ ಕೋ, ಉಮರ್ನೆ ದೇ ಅಂತಸ್ಸೆ ಕರುಣಾ ಕಿರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಕರೇ ಮನ್ಸಾ ಸೇವಾ, ಬಢಾಯೇ ಚರಣ ಕೋ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಬದಲ್ ದೇ ವಾತಾವರಣ ಕೋ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಹೋ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೋ. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕೆ ಆಜ್ ಕೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋ ಕೋ ಏಕ್ ಬಾರ್ ರಿವಿಜನ್ ಕರ್ ಲೇ, ರಿವೈಸ್ ಕರ್ ಲೇ. ಪ್ಯಾರೇ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ, ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ತುಮ ಅಭಿ ಜಾತೆ ಹೋ ಅಪ್ನೆ ಸುಖ ಧಾಮ ವಾಯಾ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಯೇ ತುಮ್ಹಾರಿ ಅಹಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೊ ತುಮೆ ಕಭಿ ಭೂಲ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಫಿರ್ ತುಮ ಹರ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ, ತುಮ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಕರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಿ ಕೌನ್ ಸಿ ಸೀನ್ ತುಮ ಅಭಿ ದೇಖ ರಹೇ ಹೋ, ಕೌನ್ ಸಿ ಸೀನ್ ದೇಖ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ಸಮಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇ ಟೋಟಲ್ ದುಃಖ ಕಾ ಹಿ ಸೀನ್ ಹೈ. ಅಗರ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕಹಿ ಥೋಡಾ ಸುಖ ಹೈ ಭಿ ತೋ ಕೈಸಾ ಹೈ ವೋ, ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕಾಗ ವಿಷ್ಟಾ ಸಮಾನ ಹೈ, ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕಾ ಕಾಗ ವಿಷ್ಟಾ ಸಮಾನ ಹೈ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಹೀ ಹುವಾ, ಬಾಕಿ ತೋ ದುಃಖ ಹೀ ದುಃಖ ಹೈ. ತುಮ ಅಭಿ ರೋಶನಿ ಮೇ ಆಯೇ ಹೋ, ತುಮ ಅಭಿ ಜಾನತೆ ಹೋ ಕಿ ಬೇಹದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಚಕ್ರ ಯೇ ಫಿರ್ತಾ ಹೀ ರಹತಾ ಹೈ, ಏಕ ದಿನ ನ ಮಿಲೆ ದೂಸರೆ ಸೆ, ತೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇ ಹರೇಕ ಕಾ ಪಾರ್ಟ್ ದೇಖನಾ ಹೈ, ಔರ್ ಯೇ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾ ಜೋ ಚಕ್ರ ಹೈ ಯೇ ಫಿರ್ತಾ ಹೀ ರಹತಾ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಸಬ್ಕಿ ನಯಿ ನಯಿ ಆಕ್ಟ್ ಚಲ್ತಿ ರಹತಿ. ಠೀಕ್ ಹೈ, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई इसमें कि इस ड्रामा में नथिंग न्यू भी है, लेकिन ड्रामा में हर पल परिवर्तन भी है, नया नया भी है, नई नई एक्ट भी है। फिर धारणा सार बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है, क्या जांच करनी है, अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। कोई भूलें होती हैं तो क्या करना है, कोई भूलें होती हैं तो उसको अपने योग बल से उस भूल को माफ करना है, अपने ऊपर रहम करना है, उस भूल को माफ करना है, कोई और नहीं करेगा। क्या करना है, किस कौन करेगा, हमें स्वयं ही करना है, अपने भूलों को माफ करना है। और क्या करना है, दूसरी बात बताइए कि ड्रामा के हर दृश्य को अपने आप पर, अपने ऊपर स्वयं ही रहम करना है। बाप जो राय देते हैं उस पर पूरा चल करके अपने ऊपर अपने आप रहम करना है। साक्षी हो अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, पार्ट को नहीं, पुरुषार्थ को देखना है, और पुरुषार्थ से प्रेरणा लेनी है। अपने को घाटा नहीं डालना है, जितना हो सके घाटा नहीं डालना है। फिर विश्व के कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के कल्याण की है सीन जो है, एक नए नए प्लान बनाने वाले, कल्याण के नए नए प्लान बनाने वाले सच्चे रहन दिल बने, ठीक है। जिसमें बाबा ने कहा वर्तमान समय पर आत्माएं अपने कल्याण अकल्याण के निमित्त स्वयं बन रही, कोई अकल्याण कर नहीं रहा है, अपने कल्याण के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, आप सब कौन है, हम सब कौन है, विश्व कल्याणकारी, हम सब हैं विघ्न विनाशक। तो क्या करना है, तो उनके पार्ट को देखते हुए उनके कल्याण की कामना करना है, उनके कल्याण के लिए प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि झाड़ तो ये झड़ना ही है, पतझड़ तो होना ही है, इसमें तो ये होता है तो ये तो होना ही है, ऐसा करके छोड़ो नहीं, बल्कि उनके कल्याण के लिए प्लान बनाओ। अब देखो कितना बड़ा पार्ट है, इसको सोच के, आज मैं सोच रहा था कि बाबा कि बाप की दृष्टि है, जैसे माँ बाप के लिए दोनों बच्चे होते हैं, एक अच्छा भी होता है एक नहीं भी अच्छा होता है, लेकिन माँ किसी के लिए बुरी कामना नहीं करती है कि मर जाए ये हो जाए हो जाए, नहीं करती है ना। ऐसे ही हमें विश्व के कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के कल्याण के नए नए प्लान बनाने, ऐसे रहन दिल बनना है, ठीक है। और कर्मयोगी वो बनता है, स्लोगन क्या था, कर्मयोगी वो बनता है जो अपने हर बुद्धि पर जिसका पूरा अटेंशन का पहरा लगा होता है। अव्यक्त इशारे में क्या था, अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा संकल्प की शक्ति जमा करो और सेवा के निमित्त बनो। उसमें बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर अंतिम जो पेपर है हमारा, फाइनल लास्ट पेपर, कितने सेकंड का होगा, एक सेकंड का होगा। उसमें अगर सेकंड से ज्यादा लगा तो क्या होगा, वो तो जानते हैं हम सब ना, सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फिर क्या होगा। इसके लिए अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन चाहिए, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना होता, तमाम ढेर सारी बातें, अगर ये संकल्प चलते हैं तो क्या होगा, अंत के समय पर हम पास नहीं हो सकेंगे, ठीक है। आप सब आए, भक्ति आपने की, अभी कर भी रहे हैं, शायद एक दिन और है, ठीक है। अब अपनी भट्ठी को यादगार बनाना है, आज की मुरली से ही ले लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, यहां से जाने के बाद आपकी भट्टी कंटिन्यू हो, निरंतर होती रहे, उसके लिए चार बातें नोट करने, और ये निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी है। चारों बात कौन सी? चार तपस्या अपनी दिनचर्या में निरंतर करना है। पहला है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। क्या करेंगे? आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, ये निरंतर करना है। लेकिन निरंतर कैसे होगा? कम से कम दिनचर्या में एक घंटा हर भाई बहन को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मअन्वेषण, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, आत्मसंशोधन, आत्मपरिमार्जन, आत्मपरिवर्तन, ये आत्मपरिवर्तन की प्रयोगशाला में बैठना जरूर है। क्योंकि बाबा यही कहते हैं, पहला ही पाठ हमारा है, मुरली के शुरू में कहते हैं, आज बाबा ने कहा डबल ओम शांति, अशरीरी होकर बैठे हो, आत्मचिंतन बैठे हो, आत्मिमानी बनकर बैठे हो, यही हमारा पहला पाठ है। और यही पाठ हमारा वर्तमान समय में अभी तक भी जितना अटेंशन देना चाहिए, ये हमारा बड़ा वीक पॉइंट है, ये चोर दरवाजा है, ये चोर दरवाजा है जिससे माया जो है वो प्रवेश करेगी। इसलिए जितना जितना हो सके अंतर्मुखी हो, अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्मचिंतन करने का अभ्यास, मनन करने का अभ्यास, अंतर्मुखी बनने का अभ्यास, अपनी जांच करने का अभ्यास, अपनी आसक्तियों को पहचानने का अभ्यास और अनासक्त होने का अभ्यास, कैसे मैं अलग हूं ये अलग है, इस अभ्यास को करने की जरूरत है। तो करेंगे ना ये सब? एक घंटा कम से कम प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए अलग से देना है। अंतर्मुखी होके बैठें और स्वयं को देखें, बहुत गहरी लेकिन बहुत अच्छी प्रयोगशाला, बड़ी रमणीय प्रयोगशाला है, बड़ी रमणीय प्रयोगशाला है। कैसे करेंगे? उसमें आपको कुछ युक्तियां बता रहा हूं, मैंने भी अभ्यास किया। और जब मैं मधुबन में आया शुरू के दिनों में 78-79 के आसपास, फिर उसके बाद ओम शांति भवन बना ही था, फिर मैंने अपने लिए आत्मचिंतन करने के लिए किचन में भोजन बनाते थे, दादी से छुट्टी ले लिया, भोली दादी से कि दादी हमें भट्टी करनी, कहाँ करना है? हमने कहा दादी वो दूर नहीं, ओम शांति भवन में करूंगा, तो यहां पांडव भवन में रहता हूं, वहां जाके दिन भर भट्टी की। दो दिन किया, एक दिन किया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरे दिन और छुट्टी ले ली, दूसरे दिन को फिर तीसरे देखा, दूसरे दिन भी अभी थोड़ा बाकी है, मजा नहीं आया, फिर तीसरे दिन भी छुट्टी ले ली। तीन दिन लगातार जो आत्मचिंतन की प्रयोगशाला में बैठा, आनंद आ गया। तीसरे दिन तक ऐसा लगा कि जैसे मैं हल्का होके उड़ रहा हूं, फरिश्ता एंजेलिक स्टेज वो अनुभव होने लगा। और वो तीन दिन आगे चलकर के मुझे एक हफ्ते तक कहीं वाणी में आना ही जैसे नहीं, नीचे उतरने का मन ही नहीं करे। और आज तक भी वो याद आता है कि कैसी लहर थी। तीसरे दिन तो सवेरे देखा ओम शांति भवन बाबा के रूम के बाहर कि मैं 2:30 बजे पहुंचा हूं, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कब उठा, कब वहां पहुंच गया। मुझे लगा कहीं अव्यक्त होकर के तो नहीं मैं आ गया हूं शरीर छोड़ करके, तो ऐसे ऐसे देखता हूं तो लगता है नहीं नहीं ये तो शरीर है, ये शरीर है, मैं छोड़ के नहीं आया हूं, स्थूल शरीर है, लेकिन याद नहीं कब उठा कब हुआ। मतलब एक एक लगन, एक जुनून, एक मन में कुछ करने का मादा, कुछ इसको कहते हैं बाबा दृढ़तापूर्ण संकल्प कि मुझे कुछ करना है। जब तक आप कोई बात को ठान नहीं लेते हैं तब तक काम जो है वो संदिग्ध होता है। कुछ भी हो अपने संकल्प पर अडिग रहो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए संकल्प करें मन में कि मुझे करना ही है। बाबा बार बार कहते हैं कि दृढ़ता के संकल्प तीली से कमजोरी के रावण को भस्म करो। दृढ़ता पूर्ण संकल्प, अपने आप से मन में निश्चय कर लो कि मुझे ये करके रहना है, तो करेंगे ये संकल्प। दृढ़ता पूर्ण कर सकते ना, एक घंटा मिनिमम पर पक्का देना है। मैंने तो अपने लिए दृढ़ता के संकल्प बना रखे हैं, कई कविताएं ऐसे याद कर रखा है, उनको सुनता हूं उनको सुनाता हूं तो भी मन में जोश उमड़ता है ना। एक कविता बहुत प्यारी सी है, उसमें है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, और दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितनी जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितनी कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, और फिर झुकने का नाम नहीं, मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ और फिर झुकने का शौक नहीं, मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना निखूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। प्यारे भाइयों बहनों, जब तक पुरुषार्थ में आध्यात्म के मार्ग में जब तक जुनून नहीं सवार होता, लगन नहीं लगा देते, मुझे कुछ करना है ठान नहीं लेते, तब तक ये काम होता नहीं। दिन बीतेंगे, जीवन बीतेगा, युग बीतेंगे, सदियां बीतेंगी, लेकिन ये दिन फिर आएंगे नहीं। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर न लगाओ, आओ वतन सजाओ। मैंने कहा बाबा सबको तो बुला लिया दादियों को, अब रहा कौन, अभी भी कहते हो देर न लगाओ, सबको तो बुला लिया, अभी तो बहुत बड़ा काम बाकी है। तो बाबा कहते हैं दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई, अरे कुछ तरस तो खाओ, उनको दरस दिखाओ। आज के मुरली में था कि क्या विश्व कल्याण की भावना नहीं उठती, क्या रहम की भावना नहीं आती, क्या उनके कष्ट देकर आपको आनंद आता है। हे माई बाप, बच्चे रो रहे हैं और मां बाप सो रहे हैं, ऐसा कैसे काम होगा? इसलिए लगन, जुनून, कुछ करना है, इसके लिए ठानना होगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब कुछ तरस तो खाओ, उनको दरस दिखाओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया, मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ, और मुझको ना बुलाओ तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम सबका चाहिए कि एक दिन भी, बाबा तो कहते हैं एक सेकंड भी आपका कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, एक साल के बराबर, एक वर्ष के बराबर, क्या कह रहे हैं या अनुभव भी करते हैं? एक सेकंड हम ब्राह्मणों का इतना कीमती है जो एक वर्ष के बराबर। जिस दिन इसकी गहराई में हम जाएंगे और अनुभव करेंगे कि हमारा एक एक सेकंड सचमुच एक एक वर्ष के बराबर है, तो हम उसको व्यर्थ न जाने देंगे। व्यर्थ बहुत है, दिन की दिनचर्या में तमाम व्यर्थ है, उन सबको चुनना है और समर्थ बनना है, इस भट्टी में संकल्प करके जाना है। कुछ प्लान बना ले ऐसा कि जो आपकी भट्टी ये यादगार बन जाए, टर्निंग पॉइंट मिले आपको, और आपको जीवन के लिए, एक महान जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए, सफल योगी जीवन के लिए प्रेरणा मिल जाए आपको। तो एक तो पहला, आपको प्रतिदिन एक घंटा आत्मनिश्चय की, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या में देना है। दूसरी भट्टी करनी है दिन भर में, निरंतर याद की तपस्या, निरंतर याद की तपस्या, निरंतर याद। बाबा कहते बच्चे श्वासों श्वास याद करो, और निरंतर याद वो सब कर सकता है जो निरंतर स्नेही है। निरंतर स्नेही ही निरंतर योगी बन सकता है, निरंतर स्मृति धारी ही निरंतर योगी बन सकता है। जिसके मन में श्रेष्ठ स्मृतियां चलती रहती हैं, निरंतर योगी वो हो सकता है जो निरंतर सहयोगी है। सहयोगी जो निरंतर सहयोग देता है सबको, जो भाई बहने अपने ज्ञान के भाई बहने मिले, उनसे आपस में ज्ञान की लेन देन करे, मुरली की पॉइंट्स हैं उनकी लेन देन करे, और क्या करे, सहयोग दे। अगर कोई भूल गया है तो उसको याद दिलाएं, कोई मुरझाया हुआ है, किसी का चेहरा लटका हुआ है, संगम युग का दिन वो रोने में जा रहा है, तो उसके सामने आके थोड़ा मुस्कुराओ ताकि वो मुस्कुराए। और कोई के आगे कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्कुराओ लेकिन वो मुस्कुराता ही नहीं, इतना गंभीरता का इतना गहरा पर्दा लगाया है, एक चेहरे पर इतने चेहरे लटके हुए हैं कि ओरिजिनल नेचर क्या वो भूल ही है। हमारे ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े गुरु गंभीर हो जाते हैं संघर्षों में। संगम युग के दिन आनंद के दिन है, और हमारे जा किस में रहे, सबको सहयोग देते चले। आपकी मुस्कान बहुत बड़ी सहयोग दे सकती है, आपके जो एक एक संकल्प है वो किसी के संकल्प को बदल सकते हैं, लेकिन संकल्पों में शक्ति हो, निश्चय कर लो। मैं प्रायः उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, एक बार ऐसे संकल्प किया दिन में, दोपहर का समय था, ये हुए बहुत साल हो गए, तो मैं सवेरे मुरली सुनने के बाद पांडव भवन के अंदर आ गया, ओम शांति भवन सुनने के बाद। दिन में बाहर नहीं निकला, सेवा में बहुत बिजी था, लेकिन दोपहर को 2 बजे लगभग मेरे मन में आया कि गेट तक जाऊं मैं और थोड़ा मुस्कुरा के जाऊंगा, मुस्कुराते हुए, और जो मिलेगा उसको ओम शांति जरूर करूंगा। करते ही हैं, मैं कमरे से निकल के एरोप्लेन जो बिल्डिंग जहां डाइनिंग हॉल है वहां से निकलकर गेट तक गया, जो भी मिला सबको ओम शांति मुस्कुराते हुए, सबको मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हुए निकल गए। गेट पे पहुंचा तो एक भाई सामने मिला, मैं कहा ओम शांति, मैं मुस्कुरा के बोला ओम शांति, उसके चेहरे पर रंग ही नहीं बदले। दो बार किया, तीन बार किया, मैंने कहा ये क्रिटिकल केस लगता है ये आसान केस नहीं है। उसके पर मैं मुस्कुराता रहा और ओम शांति करता रहा, मेरे सारे वार जो है वो बेकार हो रहे थे। फिर मैंने पूछ लिया पकड़ के नजदीक से आकर कि भाई जी क्या बात है। कहा भाई मैं क्या बताऊं, बहुत निराश हो गया था, सोच लिया था कि चलो एक बार अंतिम बार मधुबन होके आते हैं, अब मेरा मन जीने के में नहीं है, ये पक्का संकल्प लिया था। फिर मैंने उसको पूछा भाई ऐसे मजबूरी क्या है, क्यों अपना जो है खत्म करना चाहते हो जीवन, इतना तंग क्यों आगे। तो उसने अपनी परिस्थिति बताई, फिर मैंने उसको 10 मिनट तक जो मैंने उसको सुनाया, धीरे 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 करके उसके जो चेहरे की रंगत है वो बदलने लगी, और बदलते 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 वो इस मुकाम पे आया कि उसने कहा, कान पकड़ा, कहा भाई जी अगर आप आज ना मिले होते तो मेरे संगम युग का ये अंतिम दिन होता। अब देखिए अभिनंदन के, देखो इसका भाग्य है, एक संकल्प ने, हमारे मुस्कान ने किसी को जीवन दान दिया। आपके पास अद्भुत ऊर्जा है, कुछ करने का मादा है, आपके अंदर सर्वगुण भरे। भगवान ने, बाबा ने हमको इतनी ढेर सारी शक्तियां दी कि हम चलते फिरते लोगों को योगदान दे सकते हैं, उनको संकल्पों के साथ उनको प्रेरणा दे सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, पल पल मर रहे हैं, बहुत लोग तो जिंदा ही मुर्दा लाश की तरह घूम रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं। बाहर नहीं, दुनिया में तो है ही है, हमारे बीकेज में भी कई हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ना उमंग है ना तरंग है, मेरी जिंदगी कटी पतंग है, है? तो जैसे इस तरह से हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, उनके अंदर आशक संचार कौन करेगा, कौन करेगा। इसलिए निरंतर सहयोग दें। हो सकता है कोई आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है आपके आसपास, भाई मधुबन आना चाहता है नहीं आ सकता है, उसको आर्थिक सहयोग करें, किसी का उमंग बढ़ाएं, किसी को प्रसन्न करें, किसी को तन का सहयोग चाहिए तो तन का सहयोग दें। कोई बहनें हैं, कुमारियां हैं, वो सेवा में लगना चाहती हैं लेकिन उनके पास बंधन बहुत ज्यादा है, आप अगर कुछ कर सके तो उनके लिए इंतजाम करें। लेकिन पल पल हमारा सेवा के लिए होना चाहिए, सहयोग के लिए होना चाहिए। तो निरंतर सहयोगी ही निरंतर योगी बन सकता, निरंतर सहयोग। आपको होमवर्क देता हूं, आप चिंतन कीजिएगा मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए बाबा बार 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 बाबा आपको प्रेरणा देते हैं। आज मुरली में बाबा विश्व कल्याण की संकल्प करते हैं, ये होगा कब, विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे, सबके कल्याण के लिए। उसके लिए एक तो पहला स्वमान होना चाहिए, रोज सवेरे आंख खोले और अपने लिए एक स्वमान का संकल्प ले लें और दिन भर में 20 से 25 बार कम से कम उस स्वमान को दोहराएं कि मैं बाप समान हूं, मैं बनूंगा नहीं, अभी से उसका संकल्प ले मैं बाप समान हूं और दिन भर में उसी स्वरूप में चलकर देखे। जैसे मैंने बताया प्रारंभ में कि कोई भी मां बाप अपने बच्चे कैसे भी हों उनको अहित नहीं करते, उनके कल्याण के लिए ही सोचते हैं। ऐसे ही ये ठीक है, इन्होंने अकल्याण के लिए अपना प्रोग्राम बनाया, अपने विनाश के लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, तो उनके ऊपर रहम करना हमको होगा, आपके अलावा कोई और नहीं। छोटी मोटी गलतियां हैं भाई बहनों के, उनको भी क्षमा करें उदार होकर के। देखिए ये मेरा अपना परिवार है, ये विश्व एक परिवार है, सभी हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। है पवन हो चमन हो, चैनो अमन हो शांति मन में सब में, गगन या भुवन हो, लगन की लगी बस यही श्रृंखला हो, सदे हो सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। बाहर दुनिया में भी जो बड़े बड़े संत हैं, वो जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो भी शुरू करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निराम, सबका कल्याण हो, सब निरोगी बने। और हम सब बच्चों को तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम सहयोग देने के लिए बने हो, ये संसार के लिए ही बने हो, तुम तो विश्व सेवाधारी हो, तो हम सबको सहयोग दे विश्व कल्याण की भावना के लिए। स्वमान रहे पक्का कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं बाप समान हूं। दूसरा जो विश्व कल्याण के लिए बहुत जरूरी चीज है वो है स्वमान के साथ साथ दृढ़तापूर्ण संकल्प, और तीसरा है इस विश्व नाटक में साक्षी होने का पार्ट। जब तक और सब बातों से आप हलचल से स्वयं मुक्त नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे आप सहयोग दे सकते, उसके लिए बहुत जरूरी है, अभी से जरूरी है कि हम साक्षी भाव धारण करें। क्योंकि जब तक स्थिति और परिस्थितियों को हम साक्षी होकर नहीं देखेंगे, हम स्वयं ही आसक्त होंगे, हम स्वयं ही हलचल में होंगे, हम स्वयं ही डोलायमान होंगे, तो हम दूसरों को अचल कैसे बनाएंगे। तो पक्का उसके लिए बनना होगा साक्षी भाव धारण करें, और फिर ड्रामा का पाठ पक्का हो कि इस ड्रामा में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है ड्रामा में क्या हो रहा है? आज बाबा ने कहा ड्रामा में दुख ही दुख की सीन टोटल, अगर कहीं कोई सुख है भी तो अल्पकाल का क्षणभंगुर का सुख है। हमारा भी मन यहां बंधा क्यों है, किसमें? आसक्तियों में। अगर आपको शक्तिशाली बनना है, शक्ति ग्रहण करना है, शक्ति धारण करना है, तो अपनी आसक्तियों को पहचानना है। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। आसक्ति है कहां? आसक्ति है सुनने में, सुनाने में, खाने में, पहनने में, घूमने में, देखने में, कहां पर है आसक्ति उनको चेक करें। अगर थोड़ी भी आसक्ति कहीं पर भी है, किसी भी जगह पर आसक्ति है, समझो वो आपकी बड़ी लीकेज है जो शक्तिशाली बनने नहीं देगी, कोई भी आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्तियां कमजोर करें। और आसक्तियों को पहचानने के लिए क्या करना है? एक तो ज्ञान का दर्पण चाहिए, बाबा की मुरलियों को पूरा बार बार पढ़ें, और बाबा पूरा दर्पण देते हैं। आज की मुरली को बार बार पढ़ें, अव्यक्त इशारे में क्या था? सारी बात यही थी। वरदान में था विश्व कल्याण की भावना, यही थी पूरी मुरली में, यही था। बच्चे तुमको ड्रामा के हर सीन को देखते चलना है, इसमें एक्ट बदली रहती, एक दिन न मिले दूसरे से, तो साक्षी बनने का पार्ट इसमें सब में पक्का करना है अपने आप को। साक्षी हो जाएं और ड्रामा के पार्ट को पक्का कर लें। पक्का होगा ड्रामा का पार्ट? ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा अच्छा ही होगा। क्या हुआ जो रो दिए, लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। और जो लिया सब कुछ यहीं से, जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लूट गया, लाए क्या जो लूट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। कल तलक जो तेरा था, आज है किसी और का और कल किसी का, जब हो ही जाए किसी का होना ही है, तो उसमें अटैचमेंट मैं और मेरापन कैसा। तो कल तलक जो तेरा था, आज है किसी और का, कल किसी का हो जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आप भी गाएंगे, गाएंगे हमारे साथ, बोलिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। गाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। क्या हुआ जो रो दिए, लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। बदलते इस विश्व का सब कुछ, बदलता जा रहा, सोच करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। क्या बात, अभिनंदन, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं मधुर वाणी में। लेकिन ये गाना नहीं बाहर से, यहां तो गा लिया, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो या घर में आग लगी हो तब ये नहीं गाना, तब मन में गाना इसको, नहीं तो कहेंगे इनको पता नहीं कहां से ज्ञान मिल गया। ये है अपने मन में गाने का पक्का करना है कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इसका एक एक दृश्य बड़ा अनमोल है, हर दृश्य साक्षी होकर देखते चलो, बहुत कल्याणकारी। जिसने ज्ञान को जितना अच्छी तरह से समझा वो समझ लेगा कि ये संगम युग कितना अच्छा है, ये ड्रामा कितना अच्छा है, ये ज्ञान कितना अच्छा है, ये ईश्वरीय परिवार कितना अच्छा है। नहीं तो कहते हैं भैया यहां भी ये होता है, वहां भी सारा दिन कंप्लेन कंप्लेट, इनकी उनकी तमाम बुद्धि में क्या भरा है। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, आए थे किसको देखने के लिए और देखने लगे किसको, किसमें टाइम जा रहा है ना। इसलिए निरंतर योगी बनने के लिए अपने आप को निरंतर सहयोगी बन जाए, फिर निरंतर योगी वो है जो निरंतर सेवाधारी है। निरंतर सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी माना स्वसेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा, ये सेवा निरंतर चलती रहे। निरंतर सेवाधारी कौन कौन सेवा? स्वसेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा और मनसा सेवा। निरंतर सेवाधारी बनकर सेवा करते जाए। निरंतर योगी बनने के लिए और क्या करना है? निरंतर सर्व संबंधों से जो बाबा को अपना बनाता है। आज भी बाबा ने कहा एक बाबा और मैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं, तभी लास्ट में एक सेकंड के पेपर में आप तब पास हो सकेंगे जब एक बाबा और मैं दूसरा न कोई। नहीं तो संबंधों का जाल सारा संसार उसमें हम सब जकड़े, उससे मुक्त होने की जरूरत है। ठीक है भाई? ठीक है, कर सकते हैं ना? तो निरंतर योगी बनने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स और देता हूं, आप मेरी बात नोट कर लें। दिनचर्या में अलग से ये 7 पॉइंट नोट कर लें, 7 पॉइंट नोट कर लें जो दिनचर्या में करना है। रोज सवेरे उठते ही हमारी पहली नजर, पहली दृष्टि प्यारे बाबा पर जाए। अब इन आंखों से इस देह को, देहधारियों को न देखा जाए। पहली दृष्टि सामने, जहां पर हम सोते हों वहां सामने व्यवस्था कर लें कि सामने बाबा को देखें और बाबा को प्यार से देखें। आंखें अपना थोड़ा सा पूछ लें, थोड़ा सतर्कता से। शुरू में नींद जरूर होगी लेकिन उसको थोड़ा सा खोल के आंखों को सजग करके बाबा को देखें। देखो किसने जगाया मुझे और मैं जागा कहां हूं? रात को बाबा की गोद में सोए वतन में, सवेरे बाबा ने जगाया तो वतन में मैं जागा हूं। बाबा ने मुझे खड़ा किया, सामने बाबा के। अब बाबा को देखते हैं, देखते हैं। जैसे गीत बनाया ना, प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है। बाबा को देखें बड़ी बड़ी बड़े प्यार से, पहली दृष्टि बाबा पर, और बाबा के प्यार से अपने आप को भर लो कि बाबा आज का दिन मुझे मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पता रात को ही छुट्टी हो गई होती हमारी, आज दिन देखने को न मिलता। इसलिए नए दिन के लिए बाबा को उठते ही उसके प्रेम में खो जाएं, उसको धन्यवाद भी दें, उसका शुक्रिया करें, उसका आभार सवेरे सवेरे शुरू कर लें। नमस्ते करें, सबसे पहले नमस्ते। सुबह सुबह उठो कहते कहते ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग कर ले, है ना? फिर दूसरा संकल्प हो कि बाबा ने मुझे तैयार किया और आज के दिन मैं अवतार ले रहा हूं। मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं बल्कि मैं वतन से उतर रहा हूं। रोज एक नई दिनचर्या, नया दिन, नया रोज जन्मदिन मनाइए कि आज के दिन मैं इस देह रूपी धरती पर, आज मेरा अवतरण हुआ है, आज मेरा नया जन्मदिन है। ठीक है? अब बर्थडे जो मनाते हैं ना साल भर में, उसको मनाने की जरूरत नहीं, हर रोज ही अपना बर्थडे मनाइए, रोज सेलिब्रेशन मनाइए, आनंद लीजिए संगम युग के दिन। सोच में, चिंता में, टेंशन में, अटेंशन में भी, अटेंशन का भी बहुत टेंशन पाले, ये करता हूं, वो करना चाहता हूं, ये नहीं होता। भैया खूब मेहनत करते हूं, योग में जाते हैं तो खूब नींद आती है, मुरली में जाते हैं तो खूब नींद आती है, और नींद करने जाते हैं तो नींद नहीं आती है। क्या गजब की स्थिति है। बूढ़े होते हैं, थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो और मन को लगता भैया दवाई लेना पड़ता है ना, घुटने चलते नहीं है, क्या करें, बुढ़ापा है ना भैया। बाबा को नहीं देखते हैं, बाबा को नींद कभी नहीं आती थी। बुढ़ापा भी गजब का है, बड़ी मुश्किल से कटता है ना, हम बिस्तर से उठते हैं ना बिस्तर हमसे उठता है। बड़ा गजब का होता है ना। इसलिए अपने आप को कभी भी बुजुर्ग समझे नहीं, ये समझे हमेशा कि मुझे एक बहुत अच्छी यात्रा करनी, हमेशा रेडी रहे। बूढ़ा न समझे, बुजुर्ग समझना है, वानप्रस्थ तो समझना है ना, नहीं बूढ़ा नहीं समझना है। नए उमंग नए उत्साह के साथ, आज के दिन मेरा अवतार हो रहा है, मैं धरती पर उतर रहा हूं और मेरे अवतरण से धरती प्रसन्न हो रही है, देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, संत महात्मा जिनको दिखाई पड़ रहा हूं वो सब अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा देखिए मेरा अवतरण हो रहा, मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, वतन से उतर रहा हूं। ठीक है, रोज क्या करना है आपको, रोज नया अवतार। कौन सा अवतार? कल के अवतार है? कौन से अवतार बनेंगे? प्रेम के अवतार बने, शांति के अवतार बने, पवित्रता के अवतार बने, शिव शक्ति अवतार बने। ऐसे करें सब कोई, ऐसे करें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं प्रेम का अवतार हूं। इस संकल्प से अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, ये दूसरी बात है। पहला वार्ता बताया कि उठते ही बाबा को नमस्ते कर लें, दूसरा स्वमान से अपने आप को मैं अवतार हूं, रोज अवतरित होइए। अब तक आप नीचे से ऊपर जाते हैं, अब नीचे से ऊपर मत जाइए क्योंकि ऊपर पहुंचे ही नहीं, बहुत दिन हो गया। अब रोज ऊपर से आइए तो ऊपर जाना सहज होगा, अनासक्त तो होना है, नष्टो मुहा बनना है, उपराम होना है, घर जाना है, तो ऊपर से आइए तो घर जाना आसान होगा। ठीक है, कर सकते हैं ना, रोज अवतार लीजिए। तीसरी बात, अमृत वेला पक्का करें। जिसको पावरफुल अमृत वेला होता है, फाउंडेशन मजबूत होती है, तो दिन की दिनचर्या में उमंग उत्साह रहता है। लेकिन उसको भी क्या करना है, अमृत वेले बैठे तो अलर्ट बैठे, नींद वाला अब तक बहुत नींद कर लिया, अब सोने वाला योग नहीं चाहिए, अब निद्रा मुक्त योग चाहिए। ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं, बैठ सकते हैं ऐसा, ऐसा बैठे, सब कोई बैठे ऐसे, ये बहुत अच्छा है बैठक। जिसको भी नींद आती है, कल सवेरे अमृत वेले यहां बैठेंगे आप, और बैठे पांव पे पांव रखने वाला, ये दादियां बैठती थी इसमें, बहुत अच्छा आसन है, बहुत मोटे होंगे तो बैठना मुश्किल होगा, लेकिन करें। और अगर थोड़ा बदली कर दें, थोड़ा कष्ट भी होगा तो कम से कम जागे तो रहेंगे, थोड़ा दर्द होगा तो जागे तो रहेंगे भाई ना। लेकिन ये बहुत अच्छा आसन है, निद्रा मुक्त बनना है। देखो हमारी बहनें भी कभी नहीं किया, लेकिन वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं। फिर ऐसे सामने देखें, सामने देखें, और थोड़ी देर तक अपनी आंखों को पूरा खोल के थोड़ा मुस्कुराहट भी लें ना, नहीं तो कोई देखेगा दृष्टि देने वाला तो डर जाएगा। तो थोड़ा मुस्कुराहट भी रहे, खुली आंखें रहे, सामने देखें, बाबा को देखें, अपलक निर्निमेश। पलक झपकने न दें, ये आपकी, अगर आपने 5 से 10 मिनट तक कर लिया तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ये अभ्यास करके देखिए, सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, इस आसन बैठे, सामने देखें, बाबा को देखें, अनुभव करें, ये सबसे सुहाने पल है। फिर तीसरा है, अमृत वेले को फाइनल करें, थोड़ा योग करें लेकिन उसमें नींद न करें। घर में बैठे हैं, नींद आ रही है तो क्या करें, उठें, दरवाजा बंद कर लें, गाना बजा दें, बहुत गाने बनाए हैं, हजारों गाने लिखे हैं, खूब डांस करें, खूब नाचें, लेकिन सोए नहीं। बाबा खुश नहीं होता है जब आपको नींद में देखता है, नींद करना योग नहीं, और हमारा नींद में ही जा रहा है। जहां प्राप्ति होती है वही नींद आती है, मुरली के टाइम नींद आती है और योग के टाइम अच्छी तरह से नींद आती है ना, उस समय पक्का के लिए। अगर इतना लोग जो भाई बहने हमारे सुन रहे हैं, अगर 1.5 घंटा योग करें और निद्रा मुक्त होके करें, देखिए आपकी दिनचर्या बड़ी अच्छी हो जाएगी। चौथी बात, मुरली पर अटेंशन दे, मुरली को ओढ़ना बिछोना सब बना दे। मुरली आपको मदद करेगी व्यर्थ से मुक्त होने में। अंतिम समय के लिए भी चिंतन को बढ़ाएं, मुरली को अपनी उन्नति का आधार बनाएं। आप मुरली को प्यार करो, मुरलीधर आपको प्यार करेगा। जिसने अमृत बेला पक्का कर लिया, अच्छा कर लिया, जिसने मुरली को अवगाहन करना, अवधारण करना, अवलोकन करना, बार बार चिंतन मंथन गहन दर्शन करना, आत्मसात करना, उसका स्वरूप बनना, जिसने मुरली को सर्वस्व अपना मान लिया, वो दिग्विजयी बन जाएगा, वो अमर बन जाएगा। और पांचवी बात, कर्मयोग, चलते फिरते उठते बैठते ये कर्मयोग कर लें। ये कैसे कर लें? हाथ करें, ऐसे हाथ करें, अनुभव करें कि बाबा यहां पर हैं और किरणें बाबा की आ रही मुझ पर, आत्मा पर आ रही, यहां देखें, फिर किरणें, फिर बाबा, किरणें और मैं आत्मा, मेरे सिर पर बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया है, बाबा निरंतर मेरे साथ है, बाबा निरंतर मेरे साथ है, बाबा निरंतर मेरे साथ है। ये अभ्यास, एक ही अभ्यास को बार 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 करें, ये आपको बहुत मदद करेगा निरंतर स्मृति में। ठीक है, ये पक्का करें। ये कर्मयोग का बहुत अच्छा उदाहरण है। और ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं मेरी तरह, फिर से बैठ जाएं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करें दिन की दिनचर्या में, या करते रहें, आपको बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। करे तो याद रहेगा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छा, इसको कर लें। छठी बात है एकांत बैठना, और सातवीं बात है सबका धन्यवाद करना। इसका धन्यवाद कर दो, धन्यवाद, सबका धन्यवाद जो लाए मधुबन में, ये दिन दिखाए, आज का दिन मुझे दुनिया में पालना दिया, रहने का मौका दिया, उन सबका धन्यवाद, धन्यवाद कर लें। और सबसे ज्यादा प्यारे बाबा को धन्यवाद कर लें। ओम शांति।